कितना गुना में कथा कर लिया जा रहा है, तो गुना सागर जो भगवान है बल्कि एक अंश एक मात्र भी नहीं हो सके। और दुनिया में जिक्र आप प्रभाव बोला, शक्ति बोला, सामर्थ्य बोला, असंभव को भी संभव कर दे, इस प्रकार से ईश्वर के बीच में आप बल्कि सामर्थ्य कहा, ईश्वर की सामर्थ्य को एक जरा सा सारी दुनिया में फैले हुए ईश्वर की सामर्थ्य को, और अपान प्रतीत होने वाली जो ईश्वर की सामर्थ्य वह सात्विक है, और असली जो गुणा शक्ति चिन्ह में जो सामर्थ्य है वह कोई प्रकार से वो चिलको है, और वह चिलके को एक भास मात्र सारी दुनिया में फैले हुए है कि जिसके वो भाव भगवान अपना प्रभाव को गीता की 10वीं जाके 41 और 42 के श्लोक में बतलाया है कि यदि यदि विभूति मत्सतम श्री मधुर जित मेवा तप्त देवा गो मम तेज संभव, जो जो संसार में विभूति वाली चीज 10वीं ध्यान में सातवीं ध्यान में जगह जगह जो आपको प्रभाव विभूति भगवान बतलाई है, सबकी सब जो विभूति दिखी और समझो की जो बल की बात बतलाई है कि अग्नि के मां जो जलाने की शक्ति, वायु में जो उड़ाने की शक्ति, बल की शक्ति, जितनी शक्तियां बतलाई वह सब शक्तियां, और समझो जितनी कांति शोभा बतलाई, सुंदरता एक विषय रूप और लावण बतलाये चित्रों एक प्रकार से, वो सब मिलकर के भगवान के मेरे जो प्रभाव है देख एक अंश को इस सब प्रादुर्भाव है, ऐसा जो प्रभावशाली जो भगवान है जी का सबर कर क्या है, एक ब्रह्मांड में अनंत जो ब्रह्मांड मिलकर के उनके बीच में जो कुछ चीज है जिसको भगवान की एक अंश की शक्ति है, सारे ब्रह्मांड के मां जो बिजली बोल करके शक्ति है, जो बिजली जो चीज है उनकी एक अंश की शक्ति है, सारी दुनिया में जो बिजली से काम हो रही जी की, तो इसी प्रकार से वह भगवान के एक अंश की शक्ति है, तो ऐसे वो प्रभावशाली है जो असंभव को भी संभव कर सके, ऐसे प्रभावशाली जो है जी कहने छोड़ के दूसरी बात को चिंतन करे कौन हो ही कैसे, तो यो एक प्रकार से आपने वो गुण और प्रभाव से अपन चिंतन करना चाहिए भगवान को, को जो स्वरूप रूप और लावण में की सुंदरता बतलाई जा रहा है सौंदर्य है, तो सारी दुनिया को जो सौंदर्य है वो केंद्र है बैंक सुंदरता की एक अंश की सुंदरता सारी मिलकर के भी नहीं हो सके, इसी प्रकार से एक अंश की सुंदरता जैसे नहीं हो सके ऐसे वह गुणा के एक अंश कोई भी मुकाबला सारी दुनिया मिलकर नहीं कर सके, और ये सब जड़ गुण है जिकार वो चेतन है, तो इस वास्ते वो चिन्हमय जो परमात्मा को जो स्वरूप है मैंने इस प्रकार से समझ लिया जावे तो वो तो इस संसार से पागल से हो जावे, संसार को भी समण आप ही हो जावे, और समण भी हो तो को कोई दम को नहीं प्रतीत हो कल्पना मात्र से प्रतीत होगी, और यदि मैं किसी सता कर प्रतीत हो तो लीला के रूप में प्रतीत हुए, तो सब प्रकार से वह अनंत देने वाली हुए भगवान को इस रूप में वह प्रतीत हुए, तो वह में कोई आपत्ति की बात नहीं आई, तो इस बात को समझ करके अरे परमात्मा को जो स्वरूप है मैं को जो इस प्रकार से समझ में आकर अपना समझ लेवा तो अपना ध्यान छूट ही हो नहीं सके, अब ध्यान के रस में इतना अपना मगन हो जावा कि एक प्रकार से उसके आगे कोई भी दूसरी चीज अपन प्रतीत नहीं हो सके, तो थोड़ा सा था भाव जो है उसको बताया है आपने भगवान के स्वरूप को, तो तीन बात में आपने कैसे कर समय हो गया, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन शांति शांति शांति।
यह महात्मा के तथा परमात्मा के नाम और रूप का तत्व रहस्य विषयक व्याख्यान मिति पौष कृष्णा द्वादशी शुक्रवार तारीख 28/12/56 को प्रातः 5:30 बजे पूज्य श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा सम्मान श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर गोरखपुर में दिया गया।
साधन है एक भक्ति सहित कर्म योग है, तो भक्ति सहित जो कर्म योग है जो ज्यादा दानी है परमात्मा की, तो प्राप्ति कर्म योग के साधन से भी हो जा रहा है, फिर सात नंबर तीरे में तो वो दिल्ली का इंस्टीट्यूट हो जाए, उसका भी अलग अलग भेद है। एक तो भक्ति समान है और एक मुख्य भक्ति है और एक अनन्य भक्ति है। जो अनन्य भक्ति है वह तो केवल भक्ति है और दोनों भक्ति तो कर्मियों के साथ में निर्भर है। खाली केवल जो कर्मयोग है उसके साथ में दोनों भक्ति तो रव है। कर्मयोग जैसे भगवान का वचन है पालन से आत्मा कल्याण हो जाए ये भाव तो रवि है। गौणी भक्ति समान भक्ति मुख्य भक्ति अनन्य भक्ति चार भेद अलग अलग है। जैसे मनुष्यों की भक्ति जो है उसको का प्रेम जो संसार में रहे और ईश्वर में जो माने हैं तो वह ईश्वर में गौणी भक्ति हुई। इसी प्रकार से थी कर्मयोग को आत्म करे तो भगवान की आज्ञा समझ करके भगवान का वचन है या समझ करके उनको पालन करे तो वह गौणी भक्ति तो उसके साथ नहीं, केवल कर्म के साथ में भी गौणी भक्ति है। केवल कर्म योग को साधन बताए है जिस पर आसक्ति को त्याग हुए वो केवल कर्मयोग है। कायन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय की योगी ने कर्म कुरंती संयम तत्वात्म शुद्ध है युक्त कर्म फलम युक्त कर्म फलम तत्वा शांति मापनो की नैष्टि किम अयुक्त काम कार्य फले सक्तो निबद्धते। ये केवल कर्मयोग है तो इसमें गुण रूप से भक्ति है ही। इनको अर्थ जो है कि काया करके मन शरीर करके मन करके और बुद्धि करके और केवल इंद्रियों करके भी ये भी लोग आसक्ति को त्याग करके आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। वह योगयुक्त पुरुष कर्म के फल को त्याग करके और निष्ठा वाली शांति को प्राप्त होते हैं। यानी परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद जो शांति मिले वह निष्ठा वाली शांति है। यूं कहो कि कर्मियों को साधन करने से जो उसकी आत्मा को उद्धार हो जाए योग निष्ठा से वह निष्ठा वाली शांति है। अयुक्त काम कार्य न फले सकते निबद्ध थे जो योग युक्त नहीं है वे लोग कामना को लेकर ही कर्म करते हैं तो फल में आसक्त पुरुष कर्मों के द्वारा बंधते हैं जन्मते मरते है थे। और केवल कर्मयोग की बात दूसरी अध्याय के वहां भी कही है। ये जो बात मैं कह चुकी हूँ ये तीसरी अध्याय के श्लोक है 11 और 12 पांचवी अध्याय 11 और 12 के श्लोक है। तो दूसरी अध्याय के वहां कर्मयोग केवल कर्मयोग बदलाव है कि कर्मण्यवादी कारक से माँ फलेश कदाचन माँ कर्म फल माते समस्त कर्मणि युक्त कर्म फलन त्यक्त्वा शांति मापनो की निश्चित अयुक्त काम कार्य ने फले शक्तो निबद्ध थी। दूसरी अध्याय 47-48 की श्लोक है। उनको भाग्यो है कि अर्जुन तेरा कर्म करने में अधिकार है फल में नहीं। भाग्य है कि तू फल की इच्छा मत कर और कर्मा को आचरण कर और कर्म के फल का हेतु भी मत बन। यानी तुम्हारे में ममता आसक्ति कामना वासना और अभिमान ये कुछ भी हो गए कर्म के विषय में तो वे भी फल देने वाला बन जा रहा है। इस वास्ते तो कर्म के फल का हेतु भी मत बनना और कर्म के न करने में भी तुम्हारी प्रीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि कर्म करने का तेरा अधिकार है। तो तू योग में स्थित होकर कर्म कर
ये धनंजय है आसक्ति को त्याग करके कि तू योग उपस्थित होकर कर्म कर। योग क्या सिद्धि और सिद्धि एवं सम भाव है, उसका नाम योग है। तो योग कर्म योग की बात है। कर्म करे जिके वहां आसक्त भी नहीं हुए और कर्म को फल भी नहीं चाहे तो वह को भी कल्याण हो जाए, साधन भी वो सुगम है। संसार के हित के लिए, प्राणी मात्र के हित के लिए अब कोई भी कर्म करा जिसमें आपको स्वार्थ नहीं हुए और वह कर्म के मापो लगाव आसक्ति भी नहीं हुआ तो वो कर्म निष्काम कर्म कहे जाए, उससे आत्मा को उद्धार हो जाए। कोई कामना नहीं लेकर करे जो सहकाम कर्म, और कोई भी कामना नहीं लेकर करे जो कोई निष्काम कर्म। तो ऐसे निष्काम कर्मी योग के मां भी गौण रूप से भक्ति रहती है। सामान्य भक्ति को कहते हैं दोनों चीज साथ में है, कर्मयोग तो है ही और समान भाव से भक्ति को भी साथ में मिश्रण है। जैसे भगवान गीता की 18:46 के श्लोक में ये बात कही है, यत्र प्रवृत्ति भूतानां और ये न सर्व निगंततम स्व कर्मांतर भेद्य सिद्धि विवृति मानव। जिस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुई है, जो परमात्मा इस संसार में व्यापक है, उस परमात्मा को अपने अपने परम धर्म के अनुसार भगवान की सेवा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सेवा वही पूजा है तो भगवान को पूज करके और परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अभिप्राय है कि परमात्मा सबके मन व्यापक है और परमात्मा इस संसार के उत्पादक है। परमात्मा से यह संसार पैदा हुई और परमात्मा इसके मन व्यापक होकर सदा स्थित है, ऐसा समझ करके अपने कर्मों के द्वारा उनकी पूजा करनी, सेवा करनी। भाव यो है कि परमात्मा सब में व्यापक है, सबकी सेवा ही भगवान की सेवा है, सबको आदर ही भगवान को आदर है, सब में नारायण समझ करके के और सबकी निष्काम भाव से सेवा की जावे तो यह भक्ति सहित यह सब कर्मयोग है। इससे भी उच्च दर्जे वो है कि जिसके मां भक्ति है सो प्रधान और कर्म है सो गुण। भक्ति तो वह प्रधान और कर्म है गुण। मई सर्वाणी कर्माणी मनुष्य अध्यात्म चेता मेरा शीर निर्मो भूतवा युद्ध स्वीप्त ज्वर गीता की तीसरी जब किस खुश। भगवान कहते हैं कि अर्जुन मई सर्वाणी कर्माणी सारे कर्म मुझ परमात्मा में समर्पण कर दे और अध्यात्म चित से थी आशा रहित होकर के ममता रहित होकर के और वीरत जो होकर के युद्ध कर। तो युद्ध करने की बात कर निष्काम भाव से ये तो क्रिया आई। इसमें मुख्यतः दो बात आई कि तुम सारे कर्मों को मुझ परमात्मा के में अर्पण कर दे, अध्यात्म चित्त से अर्पण कर दे। फिर तो परमात्मा विषय को चित पूरी अध्यात्म चित एक सब कर्म भगवान के वहां समर्पण कर दे। इसलिए इनमें भक्ति की प्रधानता हो। जहां अनन्य भक्ति है वह भक्ति के और दूसरी बात है ही नहीं। ऐसे श्लोक भी बहुत सी गीता के वहां आए जैसे मच्चित्ता मदगत प्राण और बोधयंत परस्पर कथयंत मन नित्यम तुष्यंती चरणती च। और कोई कर्म नहीं है, खाली उपासना उपासना भक्ति भक्ति है। अर्जुन जिनका मेरे में चित है और मेरे लिए जिनका संसार में जीवन है, मेरे लिए जीते हैं और मेरी चर्चा करते हुए परस्पर एक दूसरे को मेरे तत्व रहस्य को जनाते रहते हैं और मेरे गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बात, लीला धर्म और नाम रूप की बात जो है मेरे भक्तों में कहे कथियंत से मन उत्तम और तुसंती से रमंती से इस प्रकार करता हुआ वे संतुष्ट है और मेरे में मन और बुद्धि इंद्रियों के द्वारा रमन करे मेरे आह्वान कर करके मन से ही एक प्रकार से मेरे ध्यान की बुद्धि से निश्चय की हो मानसिक भाव से ही भावित होकर के और सब इंद्रियां जिसकी मेरे में पास करे भगवान के वो मेरी शरण है तो उसको जल्दी काम में इसमें केवल भक्ति है अनन भक्ति अनन चेता सततन योमन स्मृति नित्यश तस्यां सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी ने यह भी अनन भक्ति है इसको भावी है कि अनन चित्त हुआ पुरुष नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उस नित्य निरंतर स्मरण करने वाले योगी के लिए मैं सुलभ हूँ ये भगवान ने गीता की आठवीं अध्याय के चौदह के शुरू में यह बात कही अनन्या चिंतन तो मांग योजना परिपाषते तेषां नित्याभिमुखानां योगक्षेम वहामि हम यह भी सब केवल भक्ति है कि अनन भाव से मेरा चिंतन करता हुआ जो उच्च कोटि की उपासना जो है निष्काम उपासना जो है नित्य निरंतर मेरे में जिनका चित्त उनके लिए कहते हैं कि आगे जाकर के उनको मैं बुद्धि विज्ञान ज्ञान देता हूँ जिनको कि मच्छिता मत के तक प्राणाम बोध लेते परस्परम कथियंत से मन लिखते हैं कुशन दीजिए रमन दीजिए कि मेरे में जिनका उचित है मर के जिनको जीवन है परस्पर में मेरी चर्चा करते रहते हैं उसी के मन संतुष्ट रहते हैं और उसी में रमन करते हैं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवानी मिश्रा पार्थ मैया विश्व के संग तो जिन पुरुषों ने इस प्रकार से मेरे में इसको लगा दिया है उनके ये बात कहते हैं और भी साफ कहते हैं कतेसंग सततयुगता नाम भरतांग प्रीति पूर्वम तो इस प्रकार से पूर्व प्रकार से मेरे में जिनका चित्त है और मेरे लिए वे जीते रहते हैं मेरी चर्चा करते रहते हैं मेरी विषय का मेरे भक्तों में कथन करते हैं इस प्रकार जो बात कही तो भगवान कहते हैं ऐसे जो पुरुष है जो नित्य निरंतर उपयुक्त प्रकार से प्रेम पूर्वक मुझको जो भजते हैं उनको मैं वह बुद्धि ज्ञान देता हूँ जिससे मेरी उनको प्राप्त हो जाती है केवल भक्ति की बात मैंने आपको कही मन मना हो मत भक्तो बद्यादि मान मुस्कुरु और माने वो सप्तम से प्रति जाने प्रिय शिविर गीता की अठारहवीं जाकर पैंसठ के श्लोक में यह बात कही कि अर्जुन तू मेरे में मन को लगा दे मेरा ही भक्त हो जा मेरी तू पूजा कर मुझको तू नमस्कार कर इस प्रकार से की करने पर तू मेरे को प्राप्त होगा मैं तुम्हारे को सब प्रतिज्ञा करके कहता हूँ क्यों कहता हूँ कि तू मेरे प्रिय भक्त है इसलिए भक्ति प्रधान कर्मयोग के साथ के में भी अलग अलग भाव एक भगवत अर्थ कर्म एक भगवत अर्पण कर्म और भगवत अर्पण का भी अलग अलग भेद है एक तो स्वरूप के में भगवत अर्पण कर्म है भगवत अर्थ भी और भगवत अर्पण भी और एक कर्म करते करते उसका मन फिर गया तो भगवत अर्पण कर दिया श्री कृष्ण एक कर्म की समाप्ति करके के वो तो भगवान के समर्पण कर दिया तो उसका भी उत्तम है किसी प्रकार से हो भगवान के अर्पण करने से उन कर्म मुख्य भगवान की प्राप्ति हो यदि कहो कि भगवत अर्थ जो कर्म है वो श्रेष्ठ है, भगवत अर्पण श्रेष्ठ है, तो भगवत अर्पण के तीन भेद में बतलाए, कर्म संपादन करने के बाद भगवान के समर्पण करे, पहले तो इस उद्देश्य से कर्म किया, यज्ञ है, दान है, तप है, या इस विषय भक्ति है, भजन है, ध्यान है, इस विषय की उपासना है, सकाम भाव से आरंभ किया, लड़का हो जावे, मुझको धन मिल जावे, इत्यादि संसारिक वस्तु साथ लगी करती, किंतु भगवान की भक्ति करते करते उसका मन श्रीया बीच में मतलब गलत रास्ते पर हूं, भगवान की भक्ति तो निष्काम नहीं करनी चाहिए, ये भाव आकर के उसमें बीच में श्री कृष्णा समस्त भाव से भी वचन मात्र से भी भगवान के अपने किए हुए कर्म अर्पण कर दिया, एक कर्म करते करते फिर मन बदल गया, क्या भगवान के समर्पण कर दिया, तो कर्म करने के बाद समर्पण किया उसे तो यह कुछ अच्छा है, जो कर्म करते करते बीच में मन बदल गया तो उसे भगवान के वो अर्पण कर दिया वाणी से भी मन से भी, और वो सबसे श्रेष्ठ है जो शुरू के मन भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म किया जा रहा है, भगवत अर्थ तो भगवत अर्थ से थी दो प्रकार को जो भगवत अर्पण है तो निजी श्रेणी को है मन की अपेक्षा, ये कर्म करने के बाद भगवान के समर्पण करना या कर्म करते करते बीच में भगवान के समर्पण कर देना, इससे तो वो श्रेष्ठ है जो केवल शुरू से भगवत अर्थ कर्म है, भगवान कह रहे हैं मदर से मैं कर्मानी कुलम सिद्धि मुआवज मेरे अर्थ कर्म करता हुआ भी सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, तो भगवत अर्थ बुद्धि से कर्म किया जाए उसमें भक्ति का वह अंग बन जाए, इसलिए वो अनन भक्ति भी उसको कही जा सके है, भक्ति प्रधान कर्म जो भी उसको कही जा सके, जैसे गीता की ग्यारहवीं अध्याय के अंत में बताया मत कर्म के मत परमो मत भक्त से निवर्जित हो निर्वय पांच ये अनिल भक्ति है, तो भगवत अर्थ कर्म होने से वो भक्ति का ही अंग हो, मत कर्म के को मतलब है कि हे अर्जुन जो मेरे लिए कर्म करा है मेरे में प्रेम होने के लिए मेरी प्राप्ति होने के लिए वो मत कर्म किल परम जो मेरी शरण है मेरे पर निर्भर है